मेरे युवा मित्रों नमस्कार। आज 22 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए अब जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर मेंस का है उसका हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और मैं पहले से ही बताता चला आ रहा हूं कि इस विश्लेषण का जो मेरा उद्देश्य है वो बेसिकली दो हैं। पहला तो यह कि आप भविष्य की रणनीति बनाने में इससे आपको मदद मिल सके, और दूसरा यह भी है कि एज ए होल जो आपकी प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन के बारे में आपके अंदर एक अंतर दृष्टि पैदा हो सके, सिलेबस को लेकर, टॉपिक को लेकर, सिलेबस के बाहर लगता है होता नहीं है जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी समझ आपके अंदर विकसित हो सके। और खासकर इन सब के कारण जब ये सारी चीजें आपके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी तो आप में चयन की कैपेसिटी पैदा हो जाए। चयन कहने का मतलब है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उनमें से कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही बेकार हैं, उन सब की समझ पैदा हो सके। और डेफिनेटली इन सबका मिला जुला प्रभाव तो यह होगा ही कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके सीधे सीधे प्रिपेयर्ड आंसर नहीं मिलते न मैगजीन में नहीं किताबों में, उन्हें आप अच्छे तरीके से लिख सकें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए मैं अब जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर के बारे में कुछ बातें आपसे कर रहा हूं। देखिए जो आपका जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर है आमतौर पर स्टूडेंट इसे इकोनॉमिक्स के पेपर का नाम दे देते हैं, जैसे सेकेंड पेपर को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। मजेदार बात यह कि फर्स्ट पेपर को ना तो हिस्ट्री कह पाते हैं ना ज्योग्राफी कह पाते हैं, यूं कह लीजिए कि वो दोनों का नाम देते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, हालांकि उसमें देखिए सोसाइटी भी है लेकिन उसको वो मिस कर जाते हैं। तो यहां ये देखिए पहली बात कि यह इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है ही नहीं, ये नाम ही है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब आप देखिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि ये इकोनॉमिक्स ही है। जब हम इकोनॉमिक्स कहते हैं तो क्या होता है, लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उसकी जो दूसरी चीजें हैं जिसको हम एक प्रकार से थोड़ा सा कठिन कहते हैं, लगता है कि यार ये थोड़ा सा साइंस जैसा है, वो दृष्टिगत होता है। लेकिन जब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वह उसका बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाता है, एकदम एक जनरल हो जाता है कि ठीक है देश का विकास कैसे हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे जो आर्थिक परिदृश्य है वो किस तरीके का है, खेती है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, व्यापार है, वाणिज्य है, इन सबको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके बारे में जानना, सड़कें कैसे बन रही हैं और क्या बनाया जाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, ये सब के सब आर्थिक डेवलपमेंट के हिस्से होते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो पता लगा मुद्रा स्फीति क्या होती है और कैपिटल गेन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानिए, दोनों में फर्क है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर है कि आप आर्थिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप तब तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीजें मालूम न हो। जैसे मान लीजिए कि अब आपको यही नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या होता है, सकल पूंजी उत्पाद क्या होता है, या और भी जो इस तरह के टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, इनकी जानकारी अगर नहीं होगी तो आप जब अखबारों में इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा की जाएगी, तो आपकी समझ में वो बात नहीं आएगी। तो ये पेपर दोस्तों इकोनॉमिक्स का नहीं है, इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर है। जैसे ही आप ये अपने दिमाग में बिठाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो टेंशन का लेवल है डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा तो डाउन जरूर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो नो ओके आई विल हैंडल इट। देखिए तो इस पेपर का नाम क्या है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पेपर का नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया साइंस वाला क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए कि साइंस में उस तरह का साइंस नहीं है कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ना है, नॉट एट ऑल। जो अभी चल रहा है, जो करेंट है, जैसे अभी अंतरिक्ष के बारे में चल रहा है, तो देखिए अंतरिक्ष पर प्रश्न पूछ लिया गया कि अंतरिक्ष को भारत कितना महत्व दे रहा, गगनयान, चंद्रयान, है ना, और हमारे जो इसरो वगैरह हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और विश्व स्तर पर पहुंच गए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक इसी तरह से और जो दूसरे फील्ड में साइंस कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीनोम है, इस तरह की जितनी भी साइंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट वाले फील्ड हैं, उनके बारे में स्वाभाविक है कि एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हम सबको जानना ही चाहिए, और खासकर यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में बस इतना ही। और फिर एक बात और भी है कि जब आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखते हैं तो पाएंगे कि साइंस से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत थोड़े से ही प्रश्न होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कितनी संख्या है साइंस से पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो शायद आपको चीज़ें और भी अधिक क्लियर हो जाएंगी। तो इसका जो नाम है, देखिए, टेक्नोलॉजी है, इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी के बाद ही है एनवायरमेंट। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट एकदम तो एक नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, अगर वो नष्ट हो रही है तो एनवायरमेंट चेंज के कारण हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, अदरवाइज एनवायरनमेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा, और एनवायरनमेंट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी पर एक आध क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे आप सीधे सीधे एनवायरनमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। इसके बाद है सिक्योरिटी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके थर्ड जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसके पेपर का नाम, उस पेपर का नाम कि ये इसमें कौन कौन से शामिल हैं। इसमें से देखिए, खासकर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी है, स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी कम तैयारी करते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर आया है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आपसे अपने लेवल के थॉट्स की मांग करते हैं, यानी कि वो बने बनाए उत्तर के आधार पर आप इनको हैंडल नहीं कर सकते, आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। करंट से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करंट से रिलेटेड है। तो मित्रों, ये आपके पेपर का नाम था, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, डिटेल सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे अपनी बात चूँकि आपको समझानी है पेपर की, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा तो की ही जानी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस फील्ड से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए और पिछले सालों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है। देखिए, अगर हम पेपर एज ए होल की बात करें कि सारे प्रश्नों को लेकर चलें, तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहा है और जो इस साल का क्वेश्चन पेपर है, वो लगभग लगभग उनका जो लेवल है वो समान ही है, लगभग लगभग बराबर है। थोड़ा सा फर्क इस बात को लेकर है कि जो मैंने अभी अभी कहा भी आपको कि जो सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, वो थोड़े से बिल्कुल नए किस्म के हैं, मतलब करंट से जुड़े हुए, ये कहना ज़्यादा सही होगा, वो करंट से जुड़े हुए हैं, जबकि पिछले साल इन पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करंट से जुड़े हुए उतने नहीं थे, वो मतलब आप किताबों में पढ़ कर के काफ़ी कुछ उत्तर के करीब पहुंच सकते थे, इस साल वह स्थिति नहीं है। तो इसलिए अगर दोनों में से यह निर्धारित करना हो कि कौन सा पेपर ज़्यादा सरल है, तो डेफिनेटली पिछले साल का पेपर अपेक्षाकृत ज़्यादा सरल है, लेकिन इस मैं अगर ये कह रहा हूँ कि पिछले साल का पेपर सरल था, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि इस साल का कठिन है, केवल तुलनात्मक दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूँ, अदरवाइज इस साल का पेपर भी पिछले साल जैसा ही है। और खासकर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इस बार का पेपर पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा आसान सा आपको लगेगा, थोड़ा सा आसान सा लगेगा। इस बार आपकी सुविधा इस बारे में काफी कुछ हो गई है कि जो साइंस का सेक्टर है, साइंस के सेक्टर से इस बार पिछले बार की तुलना में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, मैं साइंस के सेक्टर की बात इसलिए कह रहा हूं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली उनको तो अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके फेवर में होता है, लेकिन जो आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साइंस के उन क्वेश्चन को हल कर पाना। तो इस बार वो आप कह लीजिए कि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं उनके थोड़ा सा ये फेवर में है, साइंस से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी चूंकि अंतरिक्ष पर है और लगातार अंतरिक्ष पर इतनी बातें हो रही है तो उसको भी हल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए अब इसका जो वर्गीकरण है, आइए उसे मैं पिछले साल के साथ आपके सामने रख देता हूं। आर्थिक विकास पर इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल नंबर है उनकी उनका 11 यानी कि 20 में से 11 क्वेश्चन जो हैं वो केवल आर्थिक विकास से हैं और मार्क्स जो इसको दिए गए हैं वो है 140। आप सोच के देखिए कि 250 नंबर का पेपर है उसमें 140 नंबर केवल आर्थिक विकास पर हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत प्यारे हैं। इससे जो नेक्स्ट कल का जो डेली ऑडियो लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसके बारे में। साइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि केवल एक ही क्वेश्चन है इस बार, जबकि पिछली बार साइंस पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया और वो भी 10 नंबर का है, 15 नंबर का वाला नहीं है, 10 नंबर का है। पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 55 मार्क्स के थे। और मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन पूछे भी गए थे साइंस के वो आसान किस्म के नहीं थे, थोड़े से कठिन किस्म के थे, मतलब बहुत रूटीन के साइंस के तहत से वो नहीं आए थे। इसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसे आप सिर्फ सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी से इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनकी वैल्यू है 50 मार्क्स। मैं समझता हूं कि काफी है 50 मार्क्स, पिछली बार थोड़े कम थे, 3 प्रश्न थे और उनकी वैल्यू थी 40 मार्क्स, 40 नंबर के। इस बार आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्यतः आप पाएंगे आपदा प्रबंधन से एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपके फेवर में बहुत अच्छी बात यह है कि आपदा प्रबंधन का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा, बड़ा छोटा सा है। आप थोड़ा सा उन्हें देख लेंगे तो आपदा प्रबंधन के क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी नहीं होती, उसमें व्यावहारिक पक्ष ज़्यादा होता है। तो पिछले साल एक प्रश्न था 15 नंबर का और इस बार 2 प्रश्न हैं 25 नंबर के। दोस्तों जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर इस बार 2 क्वेश्चन हैं 25 नंबर के, पर्यावरण पर, इसमें एक जैव विविधता पर भी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज जो डिवीजन है क्वेश्चन पूछे जाने के उसके बारे में चर्चा की है। जहां तक देखिए एक क्वेश्चन पूछे जाने, 2 क्वेश्चन पूछे जाने की बात है, आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार इस पर इससे तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोड़ो इसको, इसकी जरा कम तैयारी कर लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप अभी जो रिजल्ट आए हैं कुछ समय पहले तक आपके मेंस के 2019 में यानी कि 2018 के एग्जाम के, उसमें से अगर आप टॉपर को निकाल दें और सेकेंड रैंक से लेकर के और 20वें रैंक तक के मार्क्स देखें, यानी कि टोटल 19 स्टूडेंट हो गए, उनमें जो मार्क्स का अंतर है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हार्डली 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का फर्क है। सोच के देखिए, यानी कि एक एक नंबर के अंतर से आपकी पोजीशन बदलती चली जा रही है और कुछ तो ऐसे हैं 20 के अंदर ही कि 3 स्टूडेंट हैं सिलेक्टेड और तीनों के एक समान मार्क्स हैं, 1062, 1062, 1062, मतलब 62 ही मत समझ लीजिएगा, हो सकता है 61 भी हो, 63 भी हो। अभी बात ऐसे ही दिमाग में आ गई तो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस संदर्भ में रख रहा हूं कि आप इसमें से किसी को भी कम वजन मत दीजिएगा, आपके लिए सभी के वेटेज बराबर हैं। नो डाउट कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, बस केवल इतना ही। तो दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही, इसी टॉपिक को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।